जरा यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां दें, जोरदार तालियां। क्योंकि वही हम सब की जिंदगी का मालिक और खालिक है। तो आए एक दो बोल गए, असी शोले खुदा दिया, असी लश्कर पसीने आ खुदा दिया, असी हार नहीं सकते, असी झंडे बता दे। हालेलुया, सब मिल कर गाएंगे। असी शोले खुदा दिया, असी शोले खुदा दिया, असी झंडे बता दे। खुदावंद खुदा को ने कहा कि तू मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा, और तुझ पर बड़ी बड़ी गहरी बातें जाहिर करूंगा जिन्हें तू नहीं जानता। खुदा बापा, आज अपने कलाम के वसीला से हम सब की रहनुमाई कर। आज का कलाम हम सब के लिए राह चिराग हो, आज का कलाम हम सब के लिए हौसला और तसल्ली का वसीला ठहरे। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद तेरा बेटा हमारा मदद जी यीशु मसीह खुद पर इनाम पाए, यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगता हूँ, आमीन। जो बाइबल मुकद्दस लेकर आए हैं मेरे साथ निकाले, नए अहदनामा में से लूका तबीब की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका नौवां बाप हम उसकी 28वीं आयत से पढ़ेंगे कि खुदावंद क्या फरमाता है। नौ बाप उसकी 28वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं तो हमें यहां पर सीखने को मिलता है 36वीं आयत में कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ इस पहाड़ पर जाता है, और इस पहाड़ पर खुदावंद यीशु मसीह की सूरत बदल जाती है। वो उस जलाली हालत में नजर आता है जो आसमानी तस्वीर है हर उस पत्ते और पत्ती की, जब वो खुदा के फरदौस में होगा। जलाली हालत को बयान किया गया है कि आसमान पर कैसा खुदा के लोगों का बदन होगा कि वो फरिश्तों की मानत जलाली हालत में होंगे। और फिर उस हजार साल बादशाही में किस तरह आदमियों का और औरतों का वजूद होगा। तो आज हमें बहुत कुछ यहां पर सीखने को मिलेगा। लूका की इंजील उसका नौ बाप उसकी 28वीं आयत में लिखा है, फिर इन बातों के बाद कोई 8 रोज बाद ऐसा हुआ कि वो पतरस और यहन्ना और यकूब को हमरा लेकर पहाड़ पर दुआ करने गया। जब वो दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि उसके चेहरे की सूरत बदल गई और उसकी पोशाक सफेद बर्फ हो गई, और देखो दो शख्स यानी मूसा और एलिया उससे बातें कर रहे थे। ये जलाल में दिखाई दिए और उसके इंतकाल का जिक्र करते थे जो यरूशलेम में वाकया होने को था। जब पतरस और उसके साथी नींद में पड़े थे और जब अच्छी तरह बेदार हुए तो उसके जलाल को और उन दो शख्सों को देखा जो उसके साथ खड़े थे। जब वो उससे जुदा होने लगे तो ऐसा हुआ कि पतरस ने यीशु से कहा, ऐ उस्ताद, हमारा यहां रहना अच्छा है, बस हम 3 डेरे बनाए, एक तेरे लिए, और एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए, लेकिन वो जानता ना था कि क्या कहता है। वो ये कह ही रहा था, बादल ने आकर उस पर साया कर लिया और जा पर वो बादल में गिरने लगे तो डर गए, और बादल में से एक आवाज आई, ये मेरा बरपसीदा बेटा है, इसकी सुनो। ये आवाज आते ही यीशु अकेला दिखाई दिया और वो चुपचाप रहे, और जो बातें देखी थी उन बातों में से किसी को उनकी कुछ खबर ना दी। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। पुराने अहदनामा में जब हम देखते हैं खुदावन का बंदा मूसा नबी 40 दिन 40 रात खुदा के पहाड़ पर जाता है कि शरीयत का वो पैगाम जिसे हम 10 अहकाम कहते हैं, वो जाता है खुदा की हुजूरी में, खुदा से उसका हुक्म लेकर नीचे बनी इस्राएल कौम के पास जब आता है तो मूसा जलाली हालत में नजर आता है। उसका चेहरा जो है जी जलाल से क्या है जी पुरनूर है, और जो लोग उस नजारे को देख रहे थे वो मूसा का चेहरा देख ना पाए क्योंकि उस पर खुदा का जलाल और नूर ठहरा हुआ था। और यहां पर भी हम देखते हैं यीशु मसीह 8 रोज बाद अपने 3 शिगिर्दों को लेकर इस पहाड़ पर गया है। ये पहाड़ आज भी मौजूद है। जब मैं इसराइल में दौरे के लिए गया तो वहां पर फिलिपी कैसरिया के इलाके में ये वाकया अभी तक वो पहाड़ वहां पर मौजूद है। और इस पहाड़ के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि फिलिपी कैसरिया का जो इलाका है उसमें ये पहाड़ अब्रानी लोगों की सोच के मुताबिक, यकीन के मुताबिक ये पहाड़ उस पहाड़ के साथ मिलता जुलता है, उसी इलाके में पाया जाता है जो हम देखते हैं पदेश 11 बाब में, जहां पर बाबल का बुर्ज हमें नजर आता है, उसी पहाड़ की ये लाइन में नजर आता है। और ये पहाड़ आज भी यहूदी लोग इसे क्या मानते हैं, दोजख का दरवाजा, क्योंकि वो ये वो जगह है, उनका यकीन है कि जहां पर गिराए हुए वो फरिश्ते जिनको जब्बार कहते हैं, ये वो जगह है जहां पर बाबल के बुर्ज को बनाते वक्त लोगों ने उन तमाम बदरुओं और नापाक रूहों और नापाक फरिश्तों से जो खुदा के नाफरमान हुए उस लूसीफर फरिश्ता के साथ दोबारा रिश्ता बहाल करने के लिए खुदा की नाफरमानी में मुसलसल झुकते हुए वो उनसे रब्ता करते हैं। तो यहूदी आज भी फिलिपी कैसरिया का जो इलाका है उस पे जो पहाड़ पाया जाता है उसे कहते हैं गोलन हाई। हम इस पहाड़ के इर्द गिर्द राय करते जा रहे थे, ये पहाड़ बहुत ऊंचा है, इस ऊंचे पहाड़ पर बहुत ज्यादा सफर करके जाना पड़ता है। और यहां पर जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने साथ किस किस को लेकर गया है जी, पतरस यूहन्ना और याकूब, ये तीनों बड़े नजर आ रहे हैं यीशु मसीह के साथ बहुत सी अहम जगहों पर। वो नजर आ रहे हैं यीशु मसीह के साथ फसा के खाने पर, वो नजर आ रहे हैं गतसमनी बाग में, वो नजर आ रहे हैं उसके पीछे हम देखते हैं जब बदरुओं को निकाला जा रहा है। तो ये तीन शख्स बहुत ज्यादा अहम नजर आ रहे हैं इस तस्वीर में, क्योंकि तीनों को अपने साथ लेकर गया। तो ये वो पहाड़ है जहां पर जैसे हमने पुराने अहदनामा में देखा था जब चर्च की बुनियाद रखी थी कि याकूब सफर करते हुए बियाबान में गया और वहां पर उसने एक पत्थर के ऊपर सर रखकर रात गुजारी, और रात को क्या देखता है कि आसमान से एक सीढ़ी जाहिर होती है जिस पर वो क्या देखता है, आसमान के फरिश्तों को आते जाते देखता है। और उस जगह का उसके ख्वाब से जागने के बाद नाम क्या रखता है, बेथेल। बेथेल नाम रखता है जिसका मतलब है खुदा का घर, और वहां पर वो क्या बनाता है, मजबा बनाता है और खुदा की क्या करता है जी, इबादत करता है। ये जगह भी जहां पर यीशु मौजूद है, जहां पर पहाड़ जिसे कह सकते हैं, इस पहाड़ पर गोलन हाई ये वो पहाड़ है, जब आप इसके इर्द गिर्द देखते हैं तो इसकी घास, इसकी मिट्टी ऐसी है जैसे सोना है। इसीलिए से गोल्डन हाइट कहा गया है, गोल्डन हाइट के बहुत बुलंद पहाड़ है। और यहूदी लोग यकीन करते हैं कि ये वो जगह है जहां पर यीशु मसीह को जब देखते हैं उसने अपने शिगिर्दों से कहा कि तुम मुझे क्या कहते हो। उन्होंने कहा, पत्रस ने जवाब देते हुए कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। ये फिलिपी कैसरिया के इलाके में पाया जाता है, कैसरिया का इलाका जो आज भी मौजूद है। जब हम फलस्तीन के बॉर्डर के नजदीक ड्राइव करते हुए जाते हैं तो वहां पर ये वाकया हमें मिलता है। तो यहां पर क्या हुआ, यीशु मसीह की सूरत बदल गई। दरअसल ये वो तस्वीर है कि आने वाली बादशाही में, जिसे बाइबल मुकद्दस खुदा की बादशाही, जिसे बाइबल मुकद्दस कहती है खुदा की वो हजूरी, जिसे बाइबल मुकद्दस कहती है कि डाकू ने सलीब पर कहा कि मुझे अपने बादशाही में याद करना, यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा, जिसे हम जन्नत फरदौस या खुदा की हजूरी कहते हैं। वहां पर लोग कैसे होंगे, जलाली हालत में, जलाली हालत में होंगे। यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह की क्या होगी, सूरत बदल गई, उसकी पोशाक सफेद वरक। जब मत्ती की जील में पढ़ते हैं, पत्रस जब मत्ती की जील में पढ़ते हैं तो वहां पर इसको जो बयान किया गया है कि ऐसी पोशाक साफ होगी जैसे किसी धोबी ने पहले कभी ना धोई हो, बड़ी ही पाक आदत। तो यीशु मसीह की सूरत बदल गई और वहां पर दो आदमी नजर आए हैं जो पुराने एहदनामा के बड़े ही माने जाने नबियों में से, नबियों अग्राम में से हैं, जिनमें कह सकते हैं कि जो बड़े नबियों में से नजर आते हैं वो कौन है जी, एलिया और मूसा नबी। इन दोनों ने बड़े बड़े अजीब काम किए। मूसा की जिंदगी के वाक्य आपको पढ़ते हैं, उसकी उम्र कुल 120 साल हुई और 120 साल में उसने 80 साल का जो तजर्बा किया वो मौजजात से भरा हुआ है। खुदा आसमान को खोलता है, खुदा दरियाए नील को उसके लिए खोलता है, खुदा आसमान से मन भेजता है, बटेरे उनको खिलाता है, खुदा उनके लिए अजीब अजीब काम करता है कि जो बयान से बाहर है कि बनी इसराइल कौम को फरौन की गुलामी से निकाल कर खुदा अपना नाम करे कि वाहद वो खुदा है, उस जैसा कोई और नहीं। एलिया को हम देखते हैं, एलिया पानी पर चादर मारता है तो समंदर थम जाता है, एलिया आसमान पर आसमान के खुदा से दुआ करता है तो आसमान से आग नाजिल होती है और कुर्बानी को जलाती है, एलिया दुआ करता है तो क्या होता है जी, आसमान से आग आती है और उसके पकड़ने वालों को क्या करती है जी, जलाकर भस्म करती है। एलिया दुआ करता है तो 3.5 साल तक मी नहीं बरसता और जब वो दुआ करता है तो फिर बारिश होती है। एलिया के बहुत से मौजजात तो यहां पर तो हमें नजर आते हैं पुराने अहदनामा के सुनना। और ये इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि यीशु का इंतकाल, उसकी वफात कहां पर होगी। बाबरकत है वो लोग जो इस जमीन पर जान जाते हैं उनके मरने से पहले कि वो कैसे और कहां और कब मरेंगे। मूसा को 120 साल की उम्र में जब उसकी आंखें नहीं दुधलाई थी, जब वो अपनी तमाम तबई कुवत में जोरावर था, खुदा ने कहा कि तू उस पहाड़ पर जाएगा जो हमें सिसना की किताब के आखिर ले बाद में मिलता है और वहां पर क्या होगा, तू वफात पाएगा। एलिया को बता दिया गया था कि एलिया तेरे लिए क्या होगा, आसमान से खुदा का रथ आएगा, जैसे फिरौन के रथ होते थे वैसे खुदा रथों का खुदा है, वो फौजों का खुदा है। इसीलिए हम कहते हैं असी हार नहीं सकते, असी झंडे खुदा दे, पता दे लश्कर खुदा दे। तो एलिया को लश्करों का खुदा अपना क्या भेजता है जी, रथ भेजता है कि उसे देकर जाए, और उसे बताया गया कि तेरे लिए कौन सी जगह, कब और कैसे। तो बाइबल मुकद्दस में हनून का हमें पता चलता है वो जिंदा आसमान पर उठाया गया, एलिया का पता चलता है वो जिंदा आसमान पर उठाया गया, और उसके बाद मूसा का पता चलता, सॉरी पालूस का पता चलता है कि वो तीसरे आसमान तक खुदा की हुजूरी में उठाया गया और फिर रोया में वो वापस आता है। यूहन्ना रसूल का पता चलता है कि वो तीसरे आसमान पर खुदा की हुजूरी में उठाया गया और फिर वो जमीन पर खुदा के कलाम को लिखता है, जिसे हम वही कहते हैं, नज़ूल कहते हैं, मुकाशवा कहते हैं, खुदा का काम, और खुदा की सांस वो लफ्जों में लिखकर कलाम पहुंचाता है। और फिर यीशु मसीह को देखते हैं कि वो मसलूब हुआ, दफन हुआ, मुर्दों में से जी उठा, और यहां पर इससे पहले कि यीशु मसीह का इंतकाल हो कि वो कैसे वफात पाएगा, मूसा और एलिया बताते हैं कि कब, कैसे और किस जगह पर तुम्हारा इंतकाल होगा। ये सारी मालूमात देने का मकसद क्या है? मकसद क्या है कि हम जानें। पहली बात आपको बताना चाहता हूं, आसमान पर हम एक दूसरे को पहचानेंगे जलाली बदन में। बहुत से लोग सवाल उठाते हैं कि मरने के बाद क्या मैं अपनी बीवी, अपने बंदे को, और बंदा अपनी बीवी को, और बच्चे अपने माँ बाप को पहचानेंगे? जी हां, आसमान पर खुदा की हजूरी में जन्नत अल फरदौस जिसे कहते हैं, वहां पर वो लोग जो यीशु पर ईमान रखते हैं एक दूसरे को जानेंगे उसी नाम से जो नाम इस जमीन पर उनको दिया गया है। मूसा को मूसा के नाम से, एलिया को एलिया के नाम से, और दूसरी बात जनाबी हालत में। तो इससे आपके सवाल का जवाब जो बहुत से लोग पूछते हैं कि आसमान पर कैसा माहौल होगा, जलाली हालत होगी, हमारा जो नाम है उसी नाम से हम पहचाने जाएंगे जो जमीन पर हमें नाम दिया गया है। और फिर तीसरी बात, खुदावंद खुदा क्या करेगा, बहुत सी भेद की बातें हम पर अयां करेगा और हम पापों से वाकिफ होंगे जो अभी जमीन पर वाकिया नहीं हुई। शागिर्दों को पता नहीं, लेकिन एलिया और मूसा जानते हैं कि यीशु मसीह किस लिए पैदा हुआ। तो ये सारी मालूमात इसलिए ताकि आपके और मेरे सवाल जवाब क्लियर हो जाए, ताकि हम इस बात से ना अमीर ना होंगे कि आसमानी बदल कैसा होगा, कैसी हमारी वहां पर हालत होगी। तो यहां पर जो बात दिखाना चाहता हूं वो अगली बात क्या है, हालेलुया, बच्चे खुदा की नेमत है। जब इस सारे माहौल को यीशु मसीह को जलाली बदन में देखा है, जब मूसा को देखा है, जब उन्होंने एलिया को देखा है, तो क्या हुआ? हालेलुया, 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 हालेलुया। पहचानेंगे और जलाली बदन होगा, और बहुत सी राज की बातें जो इस दुनिया के लोग नहीं जानते आसमान पर खुदा उन पर क्या करेगा जी, जो आसमान में होंगे अयां करेगा, प्रकाश देगा और उन पर जाहिर करेगा। तो यहां पर जो बात सीखने की है वो ये कि शागिर्दों ने जैसे ही यीशु मसीह को जलाली हालत में देखा वो डर गए, और डर के बाद क्या हुआ है, क्या हुआ है यहां पर देखते हैं। यीशु मसीह का बंदा पतरस बड़ा ही तेज तराज और बहुत ही बड़बोला रहा है। जहां कहीं पे देखते हैं तो सबसे पहले किसका हाथ नजर आता है, पतरस का। लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, पतरस ने कहा तो खुदा का बेटा मसीह है, हमें यरूशलेम में जाना चाहिए। पतरस कहता नहीं 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 यीशु वहां पर तुझे नहीं जाना चाहिए, वो तुझे कत्ल करना चाहते हैं। यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और पतरस को जब जाहिर किया गया 16वें बाप की मत्ती की जीव के 16वें बाप में, तो यीशु मसीह को पतरस क्या कहता है, ऐसा ना हो कि तेरा इंतकाल हो और तू दुख उठाए, और वो जल्दी से कह देता यीशु मसीह ऐसा ना हो कि तू मरे, और यीशु मसीह कहता है ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि जिस मकसद के लिए मैं पैदा हुआ उसे पूरा करना जरूर है। जल्दी में वो कहता है यीशु मैं तेरे लिए मरने को तैयार हूं, और जब वक्त आता है तो 3 दफा, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 दफा वो यीशु का इनकार कर देता है। तो यहां पर पतरस बड़े जल्दी के साथ यहां पर क्या कहता है, उसने क्या कहा, 33वीं आयत में लिखा है जब वो उससे जुदा होने लगे तो ऐसा हुआ कि पतरस ने यीशु से कहा ऐ उस्ताद हमारा यहाँ रहना अच्छा है, हम 3 डेरे बनाएंगे। ये 3 डेर उससे मुराद है यानी कि 3 मकबरे बनाएंगे जहां पर हम क्या करेंगे जी, इस जगह को वो जगह बना देंगे ताकि लोग दूर दूर से आकर यहां पर क्या करें, सजदा करें। आज दुनिया में बहुत जगह पर हम देखते हैं जहां पर कोई मौजदा, जहां पर कोई वाकया हो तो उसे क्या बना लेते हैं, वो जगह बना लेते हैं कि लोग आकर वहां पर झुके। आप सबको मेरे खानदान से वाकिफ है, मेरा दादा, उसका उस्ताद, उसका बाप, उसका बाप, उसका बाप जो तावीज धागा जादूगरी में बुत परस्ती में शामिल थे आज क्या है, कब्रिस्तान में उनकी कब्र बनी हुई है और उसके मानने वाले आज भी आकर उनके ढेरों पर, उनके मकबरों पर क्या करते हैं जी, सजदा करते हैं। शागिर्द यीशु के साथ रहकर भी इस भेद को जान ना पाए, और शागिर्दों में से पतरस जल्दी जल्दी कहता है मैंने मूसा को देख लिया, मैंने एलिया को देख लिया, मैंने यीशु मसीह को उस हालत में देख लिया जिसे कोई और अभी तक देख नहीं पाया, क्योंकि यीशु मसीह ने पीछे ही वादा किया था कि तुम में से बहुत से ऐसे हैं जब तक वो खुदा की बादशाही को देख ना ले वो मौत का मजा नहीं चखेंगे। और यहां पर वैसे ही लिखा है इसी बात की, जब हम नौवें बाप की 27वीं आयत को देखते हैं तो यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं उनमें से जो यहां खड़े हैं बाज ऐसे हैं जब तक खुदा की बादशाही को देख ना ले मौत का मजा हरगिज ना चखेंगे। 8 दिन बाद पतरस, यूहन्ना और यकूब खुदा की बादशाही को देखते हैं जमीन पर, और उन्होंने इससे पहले मौत का मजा चखे उन्होंने खुदा की बादशाही को देख लिया। और पतरस जल्दी जल्दी में क्या कहता है, हम 3 डेरे बनाएंगे, 3 मकबरे बनाएंगे, एक यीशु तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। और उसका बनाने का मकसद, उसके पीछे सोच क्या थी, ताकि लोगों को बताए, ताकि लोगों को इस बात के बारे में तैयार करें कि यहां पर खुदावंद यीशु मसीह जलाली हालत में आया। आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह ने कहीं भी नहीं कहा कि उसका मजस्मा या उसका कोई ऐसा निजाम बनाकर उससे सजदा किया जाए। यीशु मसीह कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके दरमियान आ मौजूद हूंगा, वो आपके कमरे में, वो आपके साथ काम की जगह पर, वो आपके साथ जहां कहीं आप जाएं, वो जिस्म में खुदा है। इसीलिए उसे इंग्लिश में कहा गया है आमनी प्रेजेंट, और उर्दू में कहा गया है हर जगह हाजिर और नाजर कादरे मुतलक खुदा। पतरस धरती धरती से कहता है कि तीन मकबरे बनाएंगे ताकि लोग यहां पर आकर कहें ये वो जगह है, यहां पर पैसे इकट्ठे किए जाए, यहां पर लोगों को और बहुत सी चीजों को तैयार किया जाए ताकि लोग इसे बिजनेस बना लें। आज दुनिया में हमें बहुत जगह पर ऐसा नजर आता है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है मरियावाद का मेला क्या बनाया हुआ है, बिजनेस। उसकी पाकीज़गी को मुकद्दसा मरियम के नाम को बहुत दफा लोग क्या करते हैं जी, गलत इस्तेमाल करते हैं अपनी जोबों में पैसा डालने के लिए। क्या मरियावाद की उस जगह पर क्या खुदावन की मान जाहिर हुई है? नहीं। तो पतरस यह सोच रहा है कि ऐसा करने से क्या होगा, हमारी वाह वाह होगी जैसे आज बहुत से लोग करते हैं। जब जब लोग खुदा के कलाम का गलत फायदा उठाते हैं वो अपना फायदा ढूंढते हैं। आज देखिए खुदा क्या कहता है, मूसा और एलिया क्या कहते हैं और खुदा खुद क्या कहता है पतरस के इस जुमले से। पतरस ने कहा हम तीन डेरे बनाएंगे, तीन मकबरे बनाएंगे, एक डेरे लिए यीशु, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। लेकिन वो जानता ना था कि क्या कहता है। बहुत सी बातें मुझे नहीं पता, बहुत सी बातें आप सबको नहीं पता, इसलिए जिस बात के बारे में हमें पता ना हो हम खामोश रहे। लेकिन लाडला पतरस यीशु का चहीता दलेर बड़ा ही सरगर्म खुदा का बंदा क्या करता है, जल्दी जल्दी से तीन मकबरे बनने चाहिए। और यहां पर उसने पहले ही बछेरा था ना, पहले ही जेल में साफ कलाम लगा लिया कि ये वो जगह होगी जहां पर हम जाकर बताएंगे कि यहां पर सब आओ। लेकिन जानता था, जानता नहीं था कि क्या कहता है। आगे क्या हुआ, वो ये कह ही रहा था कि बादल ने आकर उस पर साया कर दिया और जब बादल में घिरने लगे तो डर गया, डर गया, क्योंकि खुदा खुदा अब कलाम करने को है। और बादल में से एक आवाज आई, ये मेरा बरकसीदा बेटा है कि क्या करो जी इसकी सुनो। यहां पर हम दो दफा सुन चुके हैं, पहला यीशु मसीह का जब बपतिस्मा हुआ खुदा का रूह कबूतर की सूरत में यीशु पर ठहरता है और आसमान से क्या आवाज आई है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। यहां पर खुदावन खुदा खुद कलाम करता है पतरस से कि पतरस जो कुछ तू नहीं जानता मैं तुझे बताना चाहता हूं कि मैं महदूद खुदा नहीं कि एक जगह पर जहां कहीं भी तुम होगे मैं तुम्हारे दुखों में सुखों में मुसीबत में तकलीफ में जहां कहीं भी जाने की जरूरत है मैं वहां पर मौजूद होगा, क्योंकि खुदा महदूद खुदा नहीं है, वो लामहदूद खुदा है। और खुदा की आवाज आसमान से आती है, ये मेरा बेटा बरकसीदा बेटा है इसकी सुनो। ये आवाज आते ही यीशु अकेला दिखाई नहीं गया और वो चुपचाप रहे, उसने जाकर किसी को नहीं बताया। आज आप पर खुदा ने बहुत सी ऐसी बातें अय्याम की हैं जो सिर्फ आपके लिए है, उसे अपने ताई रखने की जरूरत है। शोखी मारने की जरूरत नहीं कि खुदा ने मुझे आसमानी शहर दिखाया है, खुदा ने मुझे ये मौजदा दिखाया है। और अगर वो मौजदा खुदा ने कहा है बताने की जरूरत है तो बताएं, अगर कहा है कि नहीं बताना तो खामोश रहना हम सबके लिए वाजिब है, क्योंकि खुदा हम पर बहुत दफा अपने भेद इसलिए जाहिर करता है क्योंकि वो हम पर शख्सी तौर पर कुछ ना कुछ वाजिया करना चाहता है। तो यीशु मसीह की सूरत बदल गई, मूसा और एलिया और खुदा खुद यहां पर नजर आ रहा है। अब हम इससे क्या सीखें? हम जिंदा खुदा के मानने वाले लोग हैं और खुदा एलिया का वाक्या पढ़ते हैं कि बाल के पुजारी जो उसके पुजारी थे वो दिन से सुबह से लेकर शाम तक पीटते रहे, चलाते रहे, रोते रहे, मातम करते रहे जिस देवता की वो पालन करते थे कि कि वो उनके लिए कुछ करे, लेकिन उनके देवता ने जिस बदरू की वो बादल कर रहे थे उस बदरू ने उनको जवाब नहीं दिया। लेकिन एलिया नबी खुदा से दुआ करता है और आसमान से आग जाहिर हुई और एलिया की दुआ का खुदा जवाब देता है, इसलिए बताने के लिए कि खुदा के अलावा इस जमीन और आसमान पर कोई और खुदा जैसी पाक हस्ती नहीं, इसलिए हम किसी और को खुदा का दर्जा ना दें। हमें खुदा को वो दर्जा देने की जरूरत है जिसके वो लायक है। हाथ के घड़े हुए बुतों में खुदा नहीं है। इंसान के बनाए हुए अपने जज्बात और ख्यालात में खुदा नहीं है। खुदा पाक है और वो चाहता है कि हम उससे वाकिफ हों। तो आज सारे पैगाम का निचोड़ क्या है? हम क्या करें? जो कुछ खुदा कहता है उसकी ताबेदारी करें। तो सवाल यह है कि खुदा से क्या कलाम कर रहा है? क्या वो आपको कह रहा है कि माफ करो? क्या वो आपको कह रहा है कि रहम करो? क्या वो आपको कह रहा है कि तरस करो? क्या वो आपको कह रहा है कि दूसरों के हमदर्द बनो? क्या वो आपको कह रहा है कि मेरी बातों को सुनो? क्या वो आपको हर रोज जब कलाम का ऐलान किया जाता है कि जाको मसीदे प्यारो जाको, वो आपको आवाज देता है हमारे वसीला से, क्या हम उसकी सुन रहे हैं या फिर अपनी नींद को ज्यादा पसंद करते हैं? हम ड्रामे की किस्त नहीं भूलते लेकिन दुआ को छोड़ना पसंद करते हैं। हम दुखों में खुदा के पास आते हैं, जब खुशहाल होते हैं तो कहते हैं खुदा तेरा शुक्र हो इसलिए अभी मैं सुखी हूं, मुझे तेरे घर में जाने की जरूरत नहीं। कौन कौन सुबह के ऐलान की आवाज सुनता है? सब सुनते हैं। सुनकर उस पर अमल कितने करते हैं? आप मुबारक हो और आप बाकी भी सब मुबारक हो। बाबरकत बनने के लिए जो कुछ मेरा बेटा यीशु मसीह ने खुदा ने कहा है कहता है उसकी सुनो। और शिकिर्दों ने सुना। शिकिर्दों ने क्या किया जी? उसकी आवाज को सुना है और वो चुपचाप यीशु मसीह को इख्तियार है जिंदगी और मौत का। यीशु मसीह वाहद वो हस्ती है जो खुदा और इंसान के दरमियानी है, जिसे कह सकते हैं कि हम सब का झगड़ा छुड़ाने वाला खुदावन यीशु मसीह है, उसकी सुने। तो अब कलाम सुनाया गया, हासिल कलाम क्या है? खुदावन खुदा का खौफ करना और उसके हुक्मों पर अमल करना। लेकिन हुक्म पर अमल कौन कौन करेगा? हम सब करना चाहते हैं। हालेलुया। करना चाहते हैं कि नहीं? मैं ये नहीं कह रहा कि करेंगे। करना कौन कौन चाहता है? हम सब करना चाहते हैं लेकिन बहुत दफा नहीं करते क्योंकि हम अपने आप को कमजोर बनाते हैं। शिक्षकों ने सुना और वो डर गए और उन्होंने किसी को नहीं बताया कि यहाँ पर तीन घेरे बनाने चाहिए। क्योंकि जब मैं इसराइल में गया, जब मैं यरूशलेम में था, जब मैं गलील में था, तो जहां पर 5,000 लोगों को यीशु मसीह ने 5 रोटियों और 2 मछलियों से सेव किया, वहां पर क्या हुआ है जी? एक जगह मखसूस की हुई है कि यहाँ पर क्या हुआ था। फिर वो जगह जहां पर यीशु मसीह की पैदाइश हुई है, आज वहां पर वो गार मौजूद है जहां पर लोग जाते हैं। जहां पर यीशु मसीह को मसलूब किया गया वो कलकत्ता की पहाड़ी मौजूद है। जहां पर यीशु मसीह के बदन को रखा गया वो खाली कब्र आज भी मौजूद है। जहां पर खुदावंद यीशु मसीह का पसीना खून की बूंदे बनकर टपका वो पहाड़ मौजूद है। जहां पर यीशु मसीह जिन गलियों में से गुजर के गया, जैसे हम खजूरी एतवार आने वाले हफ्तों में मनाएंगे, वो गलियों पर मैं चलकर उस जगह पर पहुंचा जहां पर पतरस ने उसका 3 बार इकरार किया। वहां पर उन्होंने गिरजा बनाया है जहां पर उन्होंने मुर्गे का निशान और उसके साथ सलीब बनाई है और पतरस का स्टैचू और नाल उसके क्या है सिपाही और आग जलाए हुए एक लड़की उसे कहती है, ये भी उनके साथ था। वो जगह मौजूद है, वो पहाड़ मौजूद है जहां पर यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तो आसमान पर ज़ौर फरमाते हुए वो ज़ैतून का पहाड़ मौजूद है, वो गसपनी बाग, और वहां पर मैंने खुद पैगाम दिया जिस बाग में यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप तेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। वो जगह जहां पर यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, वहां पर खड़े होकर उस पानी को छूने का और वहां पर तजर्बा करने का मौका मिला कि ये वो जगह है जहां पर उसने आसमान से आवाज आई और कबूतर की सूरत में रूह उतरता और कहता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। उस जगह पर जहां पर 38 बरस का बीमार इस बात की फिक्र में था कि कोई जब फरिश्ता खुदा का फरिश्ता जाहिर होगा पानी हलाएगा, और जब वो पानी हलाया जाता था उस पानी के वसीला से जिस किसी की जो कोई बीमारी होती थी वो बीमारी दूर हो जाती थी। वो बैतसैदा का हौज, शलोम का जो हौज है, जो तालाब है, वो आज भी मौजूद है। वहां पर मैं अंदर गया क्योंकि अब वो सूखा हुआ है, वहां पर चर्च बना हुआ है और वहां पर जाकर मैंने खुद बहुत से 70 से ज्यादा लोगों के साथ परस्तिश का कोर्स गाया, और वो कोर्स क्या था, हालेलुया 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 हालेलुया। वो मौजूद है, वो आखिरी रात वाला फसा जहां पर खाया गया उस जगह को वो मौजूद है, वो मौजूद है। और ये सारे वाक्यात शेयर करने का मकसद क्या है, हम खुदा के बेटे यीशु मसीह की सुने। सो आपसे को क्या कह रहा है, आपके और उसके दरमियान कौन सी रुकावट है, नींद है, लालच है, सुस्ती है, लापरवाही है, या फिर कोई और बात हमें रोके हुए है, या फिर शैतान हर रोज आपको कहता है सो जाओ एतवार को चले जाना, सो जाओ, ईद आने वाली है, थोड़ा सा चंदा ज्यादा दे देना, सो जाओ, क्रिसमस आएगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेना, तुम्हारी इबादत हो जाएगी, सो जाओ। ये मेरा प्यारा परगजीदा बेटा है, इसकी सुनो, मेरी ना सुने, किसी और की ना सुने, खुदा के कलाम की सुने, क्योंकि कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। इसलिए जब आवाज आई जागो मसीह दे प्यारो जागो, तो फैसला आपको करना होगा, मुझे करना होगा। मेरा हर रोज दिल करता है सो जाओ, मेरा हर रोज दिल करता है कि पढ़ने की जरूरत नहीं, मेरा हर रोज दिल करता है कि कुछ भी करने को जरूरत नहीं, लेकिन खुदा के बेटे की आवाज को सुनकर सुनाना जरूरी है। सो आए हम खुदा के हुजूर झुकें, खुदा से कहें कि हमारे बंद कानों को खोल, खुदा से कहें कि हमारे सब दिलों को नरम कर, खुदा से कहें कि हमारी बुरी आदतों में खुदा अच्छी आदतों की पैदावार की फसल हम काटें, खुदावंद खुदा मेरी गुमराही को दूर कर। खुदावंद अगर मेरे दिल में नफरत है तो मैं नफरत की जगह मोहब्बत अपने पड़ोसी से करने वाला करने वाली बन जाऊं। खुदावंद से कहें कि खुदावंद अगर मेरी जिंदगी में सुस्ती है तो मेरी सुस्ती को खुदावंद खुदा तो दूर कर। आपका जो भी मसला है उसे पुकारें, उससे कहें, क्योंकि वो आपके मसलों को आपकी तमाम कमजोरियों को जानता है, क्योंकि हम नहीं जानते लेकिन वो इनको पूरा करने की कुवत और ताकत रखता है। हम सब खुदावंद के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद खुदा तेरे दुआ का हम तेरे लोगों के लिए, खुदावंद खुदा अपने लिए, तो हम सब की जरूरतों से वाकिफ है, कमजोरियों से वाकिफ है। खुदावंद खुदा हम जो नफरत करते हैं वो नफरत मोहब्बत में बदल जाए। खुदावंद खुदा जो हम तरस नहीं करते हम तरस करना सीख जाए। खुदावंद खुदा हम जो गुनाह करते हैं गुनाह से दूर भागे। खुदावंद खुदा हम जो नाफरमानी करते हैं वो नाफरमानी ताबेदारी में बदल जाए। खुदावंद हम जो सुस्ती करते हैं वो सुस्ती लाचारी, खुदावंद खुदा तंदुरुस्ती और खुदावंद चुस्त फुर्ती में बदल जाए और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। हम सब पर खुदावंद अपने भेदों को जाहिर कर ताकि खुदावंद तेरी मर्जी को जाने और पूरा करें। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। कौन कौन खुश है जी आज के कलाम से? यीशु के लिए ना जोरदार तालियां बजाएं। तने जोर क्या है, किसकी सुननी है जी? खुदा के बेटे और उसके कलाम की। फैसला हम सबका है। आए हम खुदावंद की हुजूरी में ये गीत गाएंगे, फैसला कर लो। हम इसकी प्रस्तुति करेंगे जिंदा।